ये कार्यक्रम सत्य घटनाओं से प्रेरित है और ये उन आपराधिक घटनाओं का नाट्य और काल्पनिक रूपांतरण है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य किसी को अपराधी ठहराना, किसी अपराध का फैसला सुनाना या अपराध को लेकर लोगों के दृष्टिकोण को प्रभावित करना नहीं है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य किसी व्यक्ति, संस्था, संगठन या किसी समूह के व्यक्तियों, लिंग, जाति, समाज, संप्रदाय, धर्म या क्षेत्र की निंदा या अवमानना करना नहीं है। इस कार्यक्रम में किसी भी मत, विचारधारा या बयान आदि को लेकर किसी भी तरह के विवाद या मतभेद के लिए चैनल या HT मीडिया लिमिटेड किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा। इस कार्यक्रम को सुनने के लिए दर्शकों को अपने विवेक का इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है।
फीवर केस 104, जुर्म के पीछे की दास्तान। उस रोज जो न देखना था वो मंजर देखा, इंसानियत के सीने में आतंक का खंजर देखा, खुशियों का सहरा तो इंतजार में रह गया जब मां की आंखों ने बेटे का कफन देखा।
मैं हूं वीर राठौड़ और मैं ले चलता हूं आपको खबाद हाउस में, जहां NSG कमांडोज ने आतंकियों को खत्म करने के लिए रॉकेट लॉन्चर्स तैयार कर लिए थे।
डोंट हैव एनी ऑप्शंस, गेट रेडी विद लॉन्चर्स।
जबकि पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स सारी घटनाओं को बड़े ध्यान से देख रहे थे। सवाल यह था कि जैसे जैसे इधर मार्कोस का शिकंजा कसता जा रहा था, हैंडलर्स की स्ट्रेटजी क्या रुख लेगी?
अच्छा भाईजान, इनका क्या करना है, जिंदा रखना है या खत्म कर दूं?
कल सुनो
जी,
अच्छे काम करो ना, मार दो इन्हें आप, है ना यार, जान छुड़ाओ अपनी। वैसे भी कुछ ही देर में फायर शुरू हो जाना है
जी,
तो इन्होंने तो रह जाना पीछे ही, है ना?
इंशाल्लाह, फिलहाल कोई मूवमेंट नहीं है।
ना ना नहीं नहीं ना, इंतजार करें आप, समझ रहे? पता जिस वक्त फायर शुरू होना है क्या सूरत हाल तैयार होता है, अंदाज नहीं है ना आपको, मतलब कितना इंटेंसिटी होना है उसका। आपको तो ध्यान रखना है कि रॉकेट फायर होगा ना तो सामने की दीवार से रिटर्न होके आपकी तरफ ना आ जाए, बस ठीक है?
इंशाल्लाह,
मैं होल्ड करता हूँ, है ना?
जी जी भाई,
करें करें, मैं सुन रहा हूँ।
फायर कर दे?
हाँ हाँ करें, मैं बता रहा हूँ ना, उनको ना बिठा के सिर के बैक साइड पर रख के ना मार दूँ, ठीक है?
असल में क्या है ना भाईजान, खालिद सो रहा था, मैं सोच रहा था कि खालिद थोड़ी देर सो लेता ना, उसकी तबीयत ना थोड़ी नासाज है।
अच्छा मैं ना आधा घंटा ठहर के आपको फोन करता हूँ, फिर ना आप उसको करना, ठीक है?
पर जल्द ही कंट्रोलर्स ने अपना आपा खो दिया, क्योंकि उन्हें अपने आदमियों से नहीं मासूम हिंदुस्तानियों की मौत से मतलब था।
हाँ जी भाईजान।
अच्छा वो आप है ना, जरा नाराज ना होना, वो सेटिंग बार बार ख्याल आ रहा था, थोड़ी चेंज की है, आपको बताता हूँ।
आप तो ये बताओ काम हो गया कि नहीं?
बस जी सामने ही है, आपकी कॉल का इंतजार कर रहा था कि आप सुन सके।
करें करें, बिस्मिल्लाह करें आप।
जी 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 भाईजान।
अट्ठाईस नवंबर सुबह 9 बजे। अब तक NSG ने ताज और ट्राइडेंट के कुछ और फ्लोर क्लियर कर लिए थे। कई गेस्ट बाहर लाए गए जिनमें से कई फॉरेनर्स थे। दोपहर 1:30 बजे तक ट्राइडेंट से 150 से ज्यादा गेस्ट्स आजाद कर लिए गए थे और आखिरकार NSG ने ट्राइडेंट की 18वीं मंजिल के एक कमरे में दोनों आतंकियों को घेर लिया। रहमान ने जब भागने की कोशिश की तो NSG की गोलियों ने उसे छलनी कर दिया। इसके बाद असदुल्ला ने हैंडलर्स को फोन किया।
अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम।
अल्हम्दुलिल्लाह भाई।
भाई असद खैरियत है?
भाई रहमान अल्लाह को प्यारे हो गए भाई।
अच्छा तेरी कॉल है?
हाँ, भाई मेरे कॉल।
अल्लाह उसकी शहादत कबूल फरमाए।
भाई कमरे में आग लगी है, मैं इधर हूँ बाथरूम में।
देखो गिरफ्तारी की जो है ना शक्ल नहीं पैदा होने देनी है, याद रखें आप।
जी जी इंशाल्लाह।
असदुल्लाह भाई, अच्छा लड़ाई की कोई शक्ल बनती नहीं दिखाई दे रही, बाहर निकल के मतलब उनसे लड़ाई करें, ग्रेनेड फोड़ के बाहर निकलने की कोशिश करें आप।
ग्रेनेड खत्म हो गए भाई।
ओहो, अच्छा हिम्मत रखना है, घबराना नहीं।
हाँ जी,
गोली लगती है ना तो इंशाल्लाह कामयाबी है।
हाँ जी,
अल्लाह जन्नत में आपका इंतजार कर रहा है, समझ रहे हैं आप?
इंशाल्लाह जी,
अल्लाह पाक मदद करे आपकी। तुसी हिम्मत करके निकलना, फोन जेब में रखना, ओके?
पर बहुत जल्द एक ही ग्रेनेड ब्लास्ट में असदुल्ला भी मारा गया। और हैंडलर्स असदुल्ला का नाम पुकारते रह गए।
असद? हाँ भाई, असद, असदुल्ला, असदुल्ला, असद।
28 नवंबर शाम 4 बजे। अब तक ताज और नरमन हाउस में लड़ाई जोर पकड़ चुकी थी। केवल 30 मिनट में 9 धमाकों ने ताज को दहला दिया। इधर नरमन हाउस में कुछ और कमांडोज ड्रॉप किए गए। शाम 6 बजे एनएसजी ने धमाके से खबाद हाउस के अंदर की एक दीवार गिरा दी।
अच्छा, बात है ना कि आप लोगों का पानी भी खत्म हो गया है। ये लोग ना ये बात समझ रहे हैं, मतलब समझ आ रही है इन लोगों को, आप लोगों को गिरफ्तार करने के चक्कर में हैं। ये चाहते हैं कि आप लोग थक जाएं, समझ रहे हैं आप?
इंशाल्लाह हम लोगों को ना आज हमें ना टकरा जाना चाहिए, वैसे भी आज जुम्मा है।
हेली आ गया ऊपर?
हाँ भाईजान, हमारे ऊपर हेली आ गया। फायर शुरू हो गया, फायर शुरू हो गया। खालिद, खालिद, कवर लो, कवर लो। हमारे घर में फायर शुरू हो गया भाईजान, हमारे कमरे में। कवर लो, खालिद, खालिद।
इसके बाद नरीमन हाउस के टेररिस्ट ने हैंडलर्स से आखिरी बार बात की।
सलाम वालेकुम भाईजान।
वालेकुम सलाम। हाँ जी,
वो भाईजान, मुझे फायर लगी है भाईजान।
ओहो, फायर लगी? ओहो, कहाँ लगा है, कहाँ लगा है आपको?
बाजू पे लगी है जी, पाँव पे भी लगा है।
अल्लाह ताला आपकी हिफाजत करे। उनके लोग भी जख्मी हो गए हैं, उनको लेके जा रहे हैं अस्पताल?
मैंने भी उनका एक कमांडो मार तो दिया है, आगे शायद इतला ना मिले, तो दुआ करो अल्लाह से।
28 नवंबर रात 8 बजे दोनों टेररिस्ट्स मारे जा चुके थे। इसके बाद एनएसजी ने नरमन हाउस को आजाद घोषित कर दिया। 28 नवंबर रात 9 बजे अब केवल ताज ही था जहां टेररिस्ट अभी तक जमे हुए थे। उनको काबू पाने की यह लड़ाई 28 की रात से 29 सुबह तक चलती रही और आखिरकार अब आतंक का अंत करीब आ गया था। उनतीस नवंबर सुबह 8:40 ताज के अंदर के चारों आतंकी मारे जा चुके थे और आखिरकार ताज के आतंक की गिरफ्त से आजाद होने के साथ 60 घंटों का एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन खत्म हुआ। और जब कमांडो बाहर आए तो प्रेस के सैकड़ों सवालों के जवाब में उनके कहे शब्द कोई हिंदुस्तानी कभी नहीं भूल सकेगा।
आप सुन रहे हैं,
दिस इज मैडलिन फ्रॉम बीबीसी।
सर, वन सेकंड सर।
सर,
इज इट फिनिश्ड?
सर, देश की जनता से आप क्या कहना चाहेंगे?
आर ऑल टेररिस्ट किल्ड?
यस, वी डिड आवर जॉब, वी डिड आवर जॉब।
और एक लंबे इंतजार के बाद आखिरकार इंसाफ की वो घड़ी आई जब 29 अगस्त 2012 को सुप्रीम कोर्ट ने इस आतंकी हमले के अकेले जिंदा पकड़े हुए आतंकी अजमल कासिद की फांसी पर मोहर लगा दी।
अजमल कासिद एक्ट इज वेरी मच एन एक्ट ऑफ वैगनर वॉर अगेंस्ट इंडिया। वी आर लेफ्ट विद नो ऑप्शन बट टू अपहोल्ड द डेथ सेंटेंस ऑफ अजमल कासिद।
और इसके बाद बहुत ही गोपनीय तरीके से 21 नवंबर 2012 को सुबह 7:30 पुणे के येरवड़ा जेल में हिंदुस्तान के सीने को छलनी करने वाले आतंकी अजमल कासिद को फांसी दे दी गई। पर क्या इतना सब देखने के बाद भी आज हम कह सकते हैं कि हिंदुस्तान के इतिहास की वो खौफनाक काली रात फिर कभी लौट कर नहीं आएगी? बिल्कुल कह सकते हैं, पर इसके लिए हमें एक रहने की जरूरत है, सजग रहने की जरूरत है, भारत का जिम्मेदार नागरिक बनने की जरूरत है, ताकि वो जो इसके लिए जिम्मेदार हैं और वो जो अपनी जिम्मेदारी से भागते रहते हैं, उन्हें उनकी असल जिम्मेदारी का एहसास कराया जा सके। हम मिलेंगे एक नई खौफनाक कहानी के साथ फीवर प्रस्तुति केस 104 में। और हां, सजग रहिए, क्योंकि अगर मैं और आप बदल गए तो सिस्टम के तो बाप को भी बदलना होगा।
फीवर केस 104, जुर्म के पीछे की दास्तान।